थोड़ा सा हम इसमें डिस्कशन करेंगे। पहली बात ये कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से पूछने की बात क्यों की गई, इसको एक छोटी सी मिसाल से हम समझेंगे। कभी आप लोगों ने आसारे कदीमा के बारे में जाना हो, कभी भी किसी जगह आसारे कदीमा में से कुछ चीज़ें निकलती हैं, शायद आप लोगों का इसमें कुछ है एक्सपीरियंस के नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ये एक मारूफ चीज़ है कि खुदाई के दौरान वहाँ से एक बुल निकला। चलो अब उसकी रिसर्च करते हैं, ये किस दौर का है, कब हुआ, किसने बनाया, क्या हुआ। तो उसके ऊपर से अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये किस दौर के लोग हैं, इन पे क्यों ये मसले आए। बनी इसराइल जो हैं, आप कह सकते हैं कि आसारे कदीमा की बनिस्बत एक जीती जागती कौम थी। आज के मुसलमानों के लिए बनी इसराइल एक ऐसी ही आसारे कदीमा की किस्म है कि जो बोल सकते हैं, जो बता सकते हैं कि देखो हम पे अल्लाह के नबी आए थे, उनकी रहमतें हुई थी, लेकिन हमने उनको ना माना, तो आज हम तुम्हारे सामने कैसे दुनिया के अंदर भटक रहे हैं। तो जब मुसलमान दूसरों से फ़ायदा उठाना चाहता है तो उसको इससे भी फ़ायदा हो जाता है कि चाहे वो कोई शख्स उसका बिल्कुल ही दुश्मनी क्यों ना हो। दूसरी चीज़ देखिए कि हमने जो ये देखा कि वह यसखरून मिनल्लज़ीना आमनू, कि वो ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं, तो हम देखेंगे कि एक मजाक किस किस तरह से उड़ता है, क्योंकि हमारे जहन में कोई इमेजिनेशन में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि मजाक उड़ाने के क्या तरीके हैं। तो अमूमन तीन तरह से लोग दीन वालों का मजाक उड़ाते हैं। सबसे पहला तरीका होता है हमदर्दी का अंदाज़। ये असल में आपके अपने ही लोग होते हैं जो आप पर हमदर्दी करते हैं। मसलन आप देखिए कि आप कुरान पढ़ने लगे, अब लोग आपको कहेंगे हाय बेचारी का क्या हाल हो गया, रंग पीला हो गया। आप ज़रा स्काफ लेना शुरू करें, लोग कहेंगे उम्र से 10 साल बड़ी लग रही हो, ये क्या मासी बन गई, क्या बन गई। ये एक स्टाइल होता है, लोग आपका मजाक हमदर्दी में करते हैं। देखो फिर मैं तुम्हारी कोई दुश्मन थोड़ी हूँ, आखिर मैं फलां हूँ ना तुम्हारी। तो ये अंदाज़ अमूमन उड़ाने वाले इंसान के अपने करीबी लोग होते हैं जो उसे मोहब्बत करते हैं। बाज़ दफ़ा माँ बाप तक बंदे की दीनदारी से परेशान होने लगते हैं कि हमें लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही नहीं दीन में होती जा रही। हाँ, फिर एक दूसरा अंदाज़ मजाक उड़ाने का क्या होता है कि दूसरे को बेवकूफ़ समझना, कम अकल समझना, पता नहीं किसकी बातों में आ गए, पता नहीं इनको क्या हो गया, जज्बाती हो गए हैं। हाँ, इस तरह से बातें लोग करते हैं कि उस काम को करने वाले को मजाक। इस पे आप सारे मौलवियों के लतीफ़े कोट कर लें जो अमूमन लोग करते हैं, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, सुनी भी ये बात, यानी 5 वक्त जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाए कि बुरी बात है, तो लोग कहते हैं हाँ जी ये मौलवी हैं, इनको और कोई काम ही नहीं है, फिर मुल्ला बोल पड़े, फिर अजान दे दी इन्होंने। तो ये अंदाज़ जो होता है दूसरे को बेवकूफ़ समझना, किसी को बहुत सुन्नत लिबास में, अच्छे तरीके में, इस्लामिक अटायर में देखेंगे तो कहेंगे ये होगा कोई मौलवी, और कोई बहुत सूटेड बूटी शख्स आए तो कहेंगे ये कोई अफसर होगा। तीसरा एक अंदाज़ क्या होता है, खुल्लम खुल्ला मजाक, हंसना। इसके अंदर अमूमन फिर नॉन मुस्लिम होते हैं, जो किसी काम को पर्दे की वजह से, या किसी को निंजा टर्टल कह दिया, किसी को कुछ कर दिया, ये सब कुछ कर दिया, इन सारे किस्म के मजाक के मुकाबले में हम सबको क्या करना है, बिल्कुल मुतमईन रहे। आप अपने एक्शन से बताएं, कभी ना परेशान हों किसी की बातों से, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, ये इंसान के ऊपर क्यों आती हैं, ताकि एक इंसान अपने आप को अल्लाह की नज़रों में सच्चा करवाए। आप कह सकते हैं कि दीन के लिए मजाक उड़वाना जो है ये एक मोमिन का एसिड टेस्ट होता है। अल्लाह ताला ये मजाक उड़वा के बंदे का देखते हैं कि ये कितना सीरियस है इस काम में। अब अगली आयतों में अल्लाह ताला हमें दिखाएंगे कि किस तरह से दुनिया में इंसानों में जो भी मुख्तलिफ मज़ाहब हुए, या आज हमें मुख्तलिफ किस्म के लोग मिलते हैं, तो उन उसकी वजूहत क्या है। जी, आयत नंबर 213, कानन नास उम्मतन वाहिदतन फबअसल्लाहु नबीय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। इब्तिदा में सब लोग एक ही तरीके पर थे, फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने नबियों को भेजा, और जो खुशखबरी देते थे और बुरी बातों के बारे में इंसानों को आगाह करते थे, और उन नबियों के ज़रिए से क्या किया, वह अनज़ला मा हुमुल किताब बिल हक, और उनके साथ किताब बर हक नाजिल की। फिर क्या हुआ उसके बाद, क्यों किताब नाजिल की, लियहकुमा बैनन नास, ताकि लोगों के दरमियान फ़ैसला किया जाए, फ़ी मख्तलफू फी, जिस मामले में वो इख्तलाफ़ करते हैं। और हकीकत क्या है कि व मख्तलफा फ़ीही इल्लल्लज़ीना उतूहु मिन बाति मा जातहुमुल बय्यिनात, और इन इख्तलाफात के रूनमा होने की वजह ये न थी کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا بلکہ اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کب ہوا؟ جب انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کیونکہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ پھر اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ فہد اللہ الذین آمنوا، پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے ان کو اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا، لمختلفو فیہ من الحق کی بیزنی ہی، جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے۔ طویل آیت ہے لیکن اس کا ٹاپک بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس پوری آیت کا جو تھیم ہے جس کے بنیاد پہ یہ آیت آپ کے سامنے ہے وہ کیا ہے کہ لوگ ابتدا میں توحید پر تھے، پھر آہستہ آہستہ جب ان کے اندر تفرقے بازی آ گئی تو وہ حق سے بٹ گئے۔ یہاں چھوٹی سی بات کروں گی کرسچینٹی کے نظریے پہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ بالکل اپوزٹ کہتے ہیں۔ آپ نے اگر کبھی ڈارونزم کو پڑھا ہو یا ان کے دوسری کہانیوں کو سنا ہو تو موسٹلی جو آج کلچر ہمارے بچوں کو دیا جا رہا ہے ان کی کتابوں میں بھی وہ کیا ہے کہ ابتدا میں انسان پیدا ہوا، دین ہی واز لاسٹ، پھر وہ ادھر ہوا، پھر اس نے بندر کو خدا بنایا، کسی نے درخت کو بنایا۔ یعنی بالکل ایک ایسا امیجینیشن دیا جا رہا ہے آج کے دور میں کہ شروع میں انسان بندر تھا پہلے، تو پھر آخر وہ انسان بنا، دین ہی واز جسٹ ٹوٹلی لاسٹ، ہی واز سرچنگ فار گاڈ، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، پھر اس نے اس کو پوجا، اس کو پوجا، اس کو پوجا، اور بڑی ٹھوکریں کھا کے دین دے ریچ ٹو گاڈ۔ یہ بالکل بگ کراس لگا دیں۔ یعنی اسلام اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل اس کی اپوزٹ بات بتاتے ہیں کہ کان الناس امتم واحدہ، سب لوگ ابتدا میں ایک تھے، اور کیا تھے؟ یہاں آپ چھوٹا سا لفظ لکھ لیں، توحید پر تھے۔ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الاعراف میں یہ بات کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا نا، تو ان کی اولاد جو دنیا میں آنی تھی، جیسے آج ہم ہیں، ان سب کی روحوں سے ایک پرومس لیا تھا، الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ جیسے اس وقت میں یہ بات کہہ رہی ہوں نا، تو میں خود کو بھی یہ بات سمجھاؤں کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ پرومس کر چکی ہوں۔ ہم سب کی جو اسپرٹس ہیں نا، سولس، انر سیلف جس کو ہم کہتے ہیں، اس سب کے اندر ایک لفظ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ۔ جب ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے نا، بیماری، تو کیوں نکلتا ہے، او گاڈ، او گوش، ہائے اللہ، ہائے اللہ، یہ اس فطرت کی پکار ہے۔ یہودی، نصرانی، کافر، بدھ مذ، ہندو، جس مذہب سے بھی آج کوئی اپنے آپ کو تعلق اپنا شو کرے، کان الناس امتوں واحدہ، اور وہ امت واحدہ مسلم تھی، یعنی مباحد تھی، توحید پر تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک 10 قرن گزرے، 10 سینچریز کہہ لیں، سب لوگ توحید پہ تھے۔ انبیاء جتنے آئے وہ توحید کی دعوت دیتے تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اگر آپ آیت پہ غور کریں تو قف کا لفظ لکھا ہوا ادھر، دیکھیے آیت کو، وقف کریں، ادھر رکیں، یعنی کان الناس امتم واحدہ تن کے بعد ایک سٹاپ ہے، یہاں رک سکتے ہیں آپ لوگ۔ مفسرین کہتے ہیں صحابہ کرام نے ادھر ایک لفظ محذوف سمجھا ہے، یعنی ٹوٹل مفہوم کیا بنتا ہے، ابتدا میں سب لوگ ایک تھے، پھر فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، پھر فبعث اللہ النبیین، ورنہ سینس نہیں بنتی۔ ایسے لگتا ہے تھے لوگ شروع میں ایک، پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجنے سے پہلے فاختلفوا یعنی فشرکوا۔ نوح علیہ السلام کے دور میں جو لوگ تھے، نیک لوگ تھے، اس میں 5 بزرگ تھے جس کو پنچ تن پاک کے نام سے آپ کہہ سکتے ہیں، لات، منات، عزا، یعوق اور یغوس، اور نصر کا بھی نام آتا ہے۔ یہ 5 نام آپ کو سورۃ نوح میں مل سکتے ہیں قرآن کی آیت میں۔ یہ نیک لوگ تھے، اپنے دور کے بڑے اچھے تھے، سینٹس ٹائپ کہہ لیں آپ، عبادت گزار تھے، اللہ کو خوش کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی موت کا وقت آتا گیا، یہ مرتے گئے۔ جب یہ مرے تو شیطان لوگوں کے پاس آیا اور وسپر کی، کیونکہ وہ پیچھے بات ہوئی نا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان نے آ کے کہا دیکھو کل تک تو یہ لات زندہ تھے، کتنی عبادت گزار تھے، کتنی ان کی برکت تھی، دیکھو اب تو یہ مر گئے، تو ہوگا کیا کہ ان کی عبادت کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں پہ نہیں پکڑتا نا، تو اب پکڑے گا۔ اب سوچنا تھا کہ تم بھی لات کی طرح بن جاؤ، تم بھی اللہ کو مان لو۔ پھر شیطان نے خیال ڈالا، اچھا دیکھو تم ایسا کرو کہ تم لات کی ایک شبیہ بناؤ، कोई ऐसे स्केचेस बना के जैसे कार्टून टाइप होते हैं या कोयले से, तो ये बना के घर में रख लो, फिर क्या होगा, इसकी तस्वीर, इसकी शबी की बरकत से अल्लाह ताला तुमसे नाराज़ नहीं होगा। आने वाली नस्लों ने ये काम शुरू कर दिया। अब कुछ अरसे के बाद वो कोयला चौक था वो मिटने लगा, फिर शैतान अगली नस्लों के पास आया, कहने लगा देखो तुम्हें तो पता है ये लात मनात कितने बड़े बुजुर्ग थे और तुम्हारे बाप दादा इनकी तस्वीरें घर में शबीहों के तौर पे रखते थे, तो अब तुम ऐसा करो कि इनके आइडल्स बना लो ताकि ये प्रिजर्व हो जाए, ये तो मिट जाएंगी तस्वीरें, तो तुम इनको ढाल लो मट्टी में, चूने में, पत्थर के, लोहे के, उसके बाद इनके बुत बन गए। फिर क्या हुआ, कुछ जनरेशन्स ने उन बुतों को घर में एक कोने में रखा होता था कि बस ऐसे ही बरकत है। फिर कुछ अरसा गुजरा तो शैतान फिर आने वाली जनरेशन्स के पास आया और कहने लगा देखो तुम देख रहे हो तुम्हारे बाप दादा के वक्त से ये बुत घर में रखा है, इधर जो पड़ा हुआ है, तो ऐसा करो कि नमाज़ पढ़ते हो ना तो वहाँ रख लो, जहाँ नमाज़ पढ़ते हो सामने रख लो, और देखो बिल्कुल मांगना अल्लाह से, सिर्फ इसकी बरकत होगी। लोगों ने ये करना शुरू किया और इस तरह आने वाली नस्लों ने उन्हीं बुतों को पूजना शुरू कर दिया। ये आइडल वर्शिपिंग इस दौर से शुरू हुई, इसका तذکرہ है कि फख्तलफू, लोगों में शिर्क शुरू हुआ, और आप देखें कि वो शिर्क किस चीज़ से फैला, मोहब्बत से फैला। आज भी बहुत थोड़े लोग जानते हैं जिनको लोग दाता हजवेरी के नाम से जानते हैं, आपने नाम सुना होगा, नाम क्या था इनका असल, किसी को पता? लाहौर में एक बुज़ुर्ग के नाम पे बहुत बड़ी दरगाह बनी हुई है। आपको पता है कि ये अजमेर से जी अली हजवेरी एक बुज़ुर्ग थे जो बरेसगीर पाको हिंद है, इसकी हिस्ट्री में मुगलिया दौर में एक बादशाह था, अकबर उसका नाम था। उसने कुरान की एक आयत से अपने, ये एक लंबी कहानी है आप कहीं और जाके सुनेंगे, यहाँ मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आज हम मुसलमान कहाँ भटक रहे हैं। एक बादशाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को इनवैलिड करार दे दिया, खुद बिल्कुल चिट्टा अनपढ़ था लेकिन अपने पास कुछ आलिम फैजी और कुछ इस किस्म के बड़े उलमा उसके पास होते थे, वो इसको मसले बताते थे। कुरान की एक आयत है कि अल्लाह ताला काम की जो प्लानिंग करता है वो 1,000 साल के लिए करता है, उसका मफहूम कुछ और है। इसके बुजुर्गों ने, जो इसके उस्ताद यानी इसके पास रहने वाले उलमा थे, उन्होंने जब ये बात पेश की तो अकबर ने कहा कि इसका अंत कि जो दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आया था वो तो अब ख़त्म हो गया, 1,000 साल हो गए, लिहाजा हम नया दीन बनाते हैं। इसने दीन इलाही के नाम पर एक दीन बनाया, आप पढ़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं कि क्या किसी मुसलमान का ये दीन हो सकता है। उसमें उन्होंने सब चीज़ें हलाल कर दी, सूद शराब हलाल कर दिया और सूअर की चर्बी, और उसमें बादशाह जो था ना अकबर, उसको खुदा का दर्जा दिया, इसको बाकायदा सजदे होते थे। अब हुआ क्या कि ये वो दौर था कि जिसमें चारों तरफ ये दीन फैलाया जा रहा था, और ऑफ कोर्स जब गवर्नमेंट का वो दीन होगा तो कितना फैलेगा। उस वक्त अजमेर से ये बुज़ुर्ग अली हजवेरी, जिनको लोग कहते हैं, ये उठे और इन्होंने उस बादशाह का मुकाबला किया कि नहीं तुम शिर्क फैला रहे हो, और उस बेस पे इन्होंने तौहीद की दावत दी। आज देखिए कि आज लोग उसी बुज़ुर्ग की कब्र के ऊपर खाना काबा की तरह तवाफ़ करते और उर्स करते और बहिश्ती दरवाजे लगाए फिर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हज के बाद सबसे बड़ा जो एक लोगों का इकट्ठा होता है वो इनके वे मज़ार पे होता है। आप लाहौर शहर में दाखिल होते हैं साथ ही आपको इनका मज़ार दिखता है। अब आप सोचिए एक बंदा जो अपनी ज़िंदगी में तौहीद की दावत देता रहा, आज आप उसी की कब्र के ऊपर सजदे करें। तो ये है कि फ़ख्त तलफ़ु तौहीद पे थे, फिर लोगों ने शिर्क किया, नेक लोगों की रास्ते पे चले, उनके तरीके पे चले, आप उन्हीं को खुदा बना के बैठ गए। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उस रास्ते पे अल्लाह चला जिस पे नेक लोग चले। हम कहते हैं अल्लाह हमें उन नेक लोगों का पल्लू पकड़ा दे, रास्ता ना दिखाना उनका। तो शिर्क कब फैलता है, मोहब्बत में। आज लोग देखें, लोग बुज़ुर्गों की तस्वीरें घरों में लगाए होते हैं, बस सजदे करते हैं, बस कहते हैं हम सुबह काम पे नहीं जाते जब तक अपने बुज़ुर्ग के आगे खड़े होके कुछ उनसे खामोशी में सलाम दुआ करके और बरकत की दुआएं ले दे के नहीं जाते। तस्वीर और शिर्क, इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जो बताने का मकसद है वो क्या है कि जब दुनिया में शिर्क फैला, बुराइयाँ फैलीं, खराबियाँ आईं, अल्लाह ने तो इंसानियत को भटकने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि फबअसल्लाहुन्नबीय्यीन, फिर प्रॉफिट्स आए, फिर हज़रत नूह का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि उस वक़्त अब ज़रूरत थी कि लोगों को तालीम दी जाए। नबियों ने क्या किया कि मुबशरीन व मुनज़िरीन, अच्छे काम करने वालों को वो खुशखबरियाँ देते थे, ग्लैड टाइडर थे, जो बुरे काम करते उसको मुनज़िर बन के डराते। यही काम आज के दौर में दाईये दीन का होता है, अच्छे काम करने वालों को वो नसीहत करता है कि अच्छे काम करो और ख़ुशी की बात है, तुम्हें जन्नत मिलेगी, बुरे कामों वालों को डराएगा। ये काम नबियों ने कैसे किया, वानज़ला माहुमुल किताब बिल हक, हर नबी के साथ एक किताब आई सच के साथ, हर नबी के पास कोई किताब थी, किसी के पास सहीफे थे, किसी के पास कोई और बात थी। मुराद ये है कि किताब की अहमियत। अब देखिए यहाँ बहुत अहम नुक्ता है आप सबके लिए भी, कि जब भी चारों तरफ फिरकेबाजी फैल जाए, जब चारों तरफ लोग मसलकों में बट जाएं, जब कहीं शिर्क और बिदत और कुफर और हक और इस्लाम का फ़र्क ना पता चले, तो फिर किस चीज़ को क्राइटेरियन बनाएंगे? वानजला माहुमुल किताब, फिर ये किताब हक के साथ लियाहकुमा बैनन नास, ये हक के फैसले करती है। ये किताब मसलकों की चार दीवारियों से निकाल कर लोगों को एक चीज़ पे लाती है कि लोगों इस किताब को मानो। फ़ी मख्तलफू, जिसमें इख्तलाफ किए हुए, और देख लो कुरान में इसके बारे में क्या है, सुन्नत में क्या है। और अल्लाह ताला ने यहाँ एक और बहुत बड़ी हकीकत खोली कि व मख्तलफ फ़ी ही, हमेशा दीन के मामले में इख्तलाफात किन्होंने किया? इल्लल्लज़ीना ऊतूहु मिन बादी मा जातहुमुल बय्यिनात, जाहिल लोग कभी इनकार नहीं करते। आप किसी का भी तसव्वुर लाएं, जो लोग दीन से ज़रा दूर होते हैं ना, वो हमेशा एक टेबल पे बैठ के खाते पीते मज़े करते रस्में रिवाज करते, जितने इख्तलाफात आते हैं, अल्लज़ीना ऊतूहु मिन बादी मा जातहुमुल बय्यिनात, इल्म वालों के पास इल्म आने के बाद होता है। जैसे कहते हैं ना कि एक नियाम में दो तलवारें नहीं रहती, इस तरह एक दस्तरखान पे दो मौलवी नहीं बैठ सकते आज के दौर में। इल्म आने के बाद इख्तलाफ होता है। आज आप देखिए दुनिया में लोग ख्वाहिशों के पीछे भाग रहे हैं, सारे फिल्म इंडस्ट्री वाले मुत्तहिद हैं ना, उन्होंने एजेंडा बनाया हुआ है कि हमने दुनिया को बेहया करके छोड़ना है। सारे म्यूजिशंस गंदे से गंदे लच्चर से लच्चर सॉन्ग्स पेश कर रहे हैं, सब सर जोड़ के बैठे हुए हैं, और जहाँ बात आती है दीन की, कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकता, तुम मेरे साथ नहीं बैठो। एक छत के नीचे 8-10 मौलवी बैठ जाएं तो शायद 15-20 पुलिसमैन गार्ड हायर करने पड़े कि किसी भी वक्त को किसी का गिरेबान ना पकड़ ले। क्यों ऐसा होता है? बगशम बई ना हम, ज़िद की वजह से। मैं बड़ा मौलवी, मैं तेरी मानू हूँ, बैठ जाओ आराम से। अब देखिए एक फ़िल्म बनती है, मैं मिसाल दे रही हूँ, बनानी नहीं चाहिए ना देखनी चाहिए, लेकिन सिर्फ मिसाल है। आप कभी उस फिल्म के एंड पे जो स्लाइड्स चलती है देखा करें, स्टोरी फलाने ने लिखी, कंपोजिंग किसी और ने की, डायरेक्टर कोई और था, बैकग्राउंड फलां था, करेक्टर ये थे, 15-20 लोगों का काम आता है ना, तो टीम बनती है। अब उसमें से आप देखिए कि कैमरा मैन का काम किया, किसी ने गाना गाया, किसी ने उसको पिक्चराइज किया, तो एक मूवी बनी जिसको सारे लोग मज़े से देखते हैं। ले आइए इसी चीज़ को दीन पे, क्या दीन के मामले में ये पॉसिबल नहीं है? हो सकता है ना? क्या आप समझ सकते हैं कि हर दीन वाला हर फन मौला होगा? बस एक शख्स है, उसकी किरत बहुत अच्छी है, वो दिन में 5 दफ़ा नमाज पढ़ता है, पढ़ाता है मस्जिद में, वो उसको आप किसी मस्जिद में इमाम रख लेते हैं, तो क्या अब लाजमी है कि वही मुफ्ती साहब हों, वही आपको बाकी भी दीन की बातें बताएं? नहीं। जिस तरह एक फिल्म टीम वर्क से बनती है ना, कोई झगड़ता नहीं, वो उससे फ़ायदा लेता है, अच्छा भाई लाओ तुम ये कर लो, तुम ये करो, उसके ऊपर इत्मीनान से एंड पे सबके नाम है। जब तक दीन वालों में ये रूह नहीं आती ना, सारे एक शहर एक इलाके के सारे दीनदार जमा, मंथली या कोई 2-3 महीने के बाद एक गेट टुगेदर हो, सारे उसमें बैठे, पहले तो हदफ बनाएं, हमने इस शहर में क्या क्या बनाना है। यहाँ मस्जिदों की ज़रूरत है, बनेंगी, यहाँ स्कूलों की ज़रूरत है, बनेंगे, यहाँ पे बच्चियों की तालीम की ज़रूरत है, बनेंगी, यहाँ पे फुला 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 जो भी सोशल और रिलीजियस मैटर्स हैं। चलो भाई अब इस काम को गोल बनाते हैं, सब बना रहे हैं, कौन कराएगा इसका? एक लीडर है, सारे 10-15 में से कौन है? चलो अब ये बताओ कि इसमें से कौन मस्जिदों को बनाने की जिम्मेदारी कौन लेता है, कौन इमामों को चूज़ करेगा, कौन तालीम को लेगा? हर बंदा अपने फील्ड में काम करें, फिर 2 माह बाद मिलें, फिर चेक करें क्या हमने अपने हदफ चूज़ किए। आप देखें सिर्फ 1 या 2 साल के अंदर पूरे शहर की दीनी ज़रूरियात पूरी होती हैं, और जब ये नहीं होता हर बंदा उठेगा मस्जिद बनाएगा। हु केयर्स कि यहाँ पहले 100 मस्जिद है, क्योंकि मेरी जो नहीं है, मेरे नाम की नहीं, और मैं मौलवी, मैं यहाँ का इंचार्ज नहीं, लिहाजा मुझे अपने हाथ से मस्जिद बनानी है। चलो जी मस्जिद बनाई, जब आप मस्जिद बनाते हैं उसके बाद आपकी फंडिंग ख़त्म हो चुकी होती है, आप न्यू प्रोजेक्ट शुरू नहीं करते, फिर आप भीख मांगते, फिर आप कहते हैं हमें चंदा दीजिए, हमारे ऊपर कर्ज़ है, हमारे ऊपर ये, क्यों आप वो काम करते हैं जो पहले ही हुआ? तो टीम वर्क के साथ ये काम होता है। अल्लाह ने अम्बिया कराम के ज़रिए से यही बात सिखाई और फरमाया फहदल्लाहुल्लज़ीना आमनु, ये बड़ा प्यारा जुमला है यहाँ। फिर अल्लाह ने रहनुमाई की, अल्लाह ने हिदायत की उन लोगों की जो ईमान लाए, लिमख्तलफू फी ही, उस मामले में जिसमें लोगों ने इख्तलाफ किया, कहाँ से अल्लाह ने रहनुमाई की? मिनल हक की, उसको हक का रास्ता दिखाया। ये कौन सा हक का रास्ता था? कि अल्लाह सुबहाना ताला मुसलमानों को फिर बताता है कि देखो अल्लाह की मर्ज़ी क्या है, फिर तुम अगर वाकई समझते हो कि ये लोग इस चीज़ को लेके साथ नहीं चलेंगे, तो फिर तुम क्या करो कि फिर तुम अल्लाह की रहनुमाई से मदद लो। इसमें एक छोटी सी बात भी आती है तफसीर में कि अल्लाह ताला ने शुरू से जो दिन मुख्तरम रखा था वो जुमे का रखा था। जुमे का दिन शुरू से ही हॉलीडे था। जब यहूद का मौका आया ना, तो उनको एक किस्म की आप कह लें ना आदत थी। और जो बंदा प्रोमिनेंट होना चाहता है ना, वो ज़रूर डिफ़र करेगा आपसे, हाँ सब ठीक है लेकिन ये ऐसे कर लेते, हालांकि सब ठीक होता है, लेकिन वो अपना जैसे कहते हैं ना अपर हैंड रखने के लिए। यहूद ने कहा नहीं जी नहीं, हमें जुमा नहीं पसंद, हालांकि कोई बुराई नहीं थी लेकिन जस्ट अपनी राय देने के लिए। अच्छा भाई तुम क्या चाहते हो? हम तो हफ्ते को मानेंगे। कहा अच्छा जाओ हफ्ता ले लो, तुम कुछ करो सही, हॉलीडे बनाओ। और हॉलीडे हमारे यहाँ तो छुट्टी है ना, हालांकि होली मीन रिलीजियस, हॉलीडे का मतलब यह है कि 7 दिनों में से एक दिन तुम ज़्यादा दीन का काम करो। अच्छा जी खैर वो कहानी अलग है, पढ़ चुके कि फिर उसको अपने भाई नहीं तो बंदर बनाए गए उनमें से कुछ लोग। फिर क्रिश्चियंस का दौर आया, उन्हें कहा भाई चलो अब तुम क्या मानते हो? उनको फिर कहा अल्लाह ताला ने जुम्मा ले लो। उन्होंने कहा अच्छा जी यहूद नहीं माने थे जुम्मे पे, हम क्यों माने? अच्छा भाई तुम क्या चाहते हो? हफ्ता ले लो। नहीं, हफ्ता तो वो हमारे मुखालफों के पास है। तो फिर क्या, चलो ऐसा करें हम इतवार दे दें। अल्लाह ताला कहते हैं लोग हक के मामले में झगड़ते ही रहते हैं, लेकिन फहदल्लाहुल्लज़ीना आमनू, या उम्मत मुस्लिमा की तारीफ़ की गई है। जब नबी सल्लम का दौर आया फिर उम्मत मुस्लिमा के लिए भी पेश की गई वही बात कि जुम्मा लेते हो हफ्ता लेते हो कि इतवार, तो मुसलमानों ने कहा कि हम जुम्मा लेते हैं। इसकी बात अल्लाह ने की कि अल्लाह ईमान वालों को राह दिखा देता है कि छोड़ो जो बात अल्लाह ने कह दी ठीक है, जुम्मा हो या हफ्ता हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो अल्लाह की बात को मानेंगे। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिराते मुस्तकीम, अल्लाह ताला है जो सिराते मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करता है। इससे क्या पता चला कि अल्लाह की रहनुमाई के बग़ैर, अल्लाह ताला की दीवी तौफीक के बग़ैर कोई बंदा आज के इन फितनों के दौर में हक़ को पहचान ही नहीं सकता। आप अच्छे भले कुरान पढ़ रहे हैं ना, अल्लाह ना करे अचानक आप रुक जाएंगे, आप नहीं आएंगे एक दिन, फिर दूसरी क्लास में आप नहीं आएंगे, फिर हमें फिक्र होगी बीमार तो नहीं परेशान तो नहीं, फिर आप कोई रिस्पांस नहीं हमें देंगे, फिर हम आपको फ़ोन करेंगे नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, और फिर बाद में अगर किसी मौके पे बात हुई तो वो ये होगा कि अब हम क्लास के लिए नहीं आ सकते। क्यों? हमें फ़लाँ ने कह दिया कि यहाँ तो आपका मसलक बदल जाएगा, यहाँ तो आपकी सोच बदल दी जाएगी, तो बस अब हम मज़ीद नहीं सीख सकते। भाई कोई मसला बताएं, आपको क्या मसला की बातें बताएं? नहीं, बस वो जिस सोच पे हम पहले थे ना, अब हम उससे हटते जा रहे हैं और घर में कन्फ्यूजन हो रहा है, और अब माँ बाप और बच्चों के बीच में कन्फ्यूजन है, शोहर बीवी के, और फिर हम नहीं आ सकते। कई लोगों की ये कहानी है, अल्लाह ना करे आप में से किसी के साथ हो, लेकिन ये होता है। वही जमता है, वही पत्ते दरख्तों के साथ चिपके रहते हैं जिनके अंदर जान होती है, वरना याद रखे ज़रा सी हल्की सी आंधी आती है ना तो पत्ते गिर जाते हैं। एवर ग्रीन या सदाबहार पत्ते देखिए, सारा साल आप सामने उनको देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस्तकामत पे हैं। इसीलिए अब अगली आयत में बड़े प्यार से अल्लाह ताला ईमान वालों को बताते हैं, और इस पुकार को आप अपने दिल पर समझ के देखिएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं अम हसिबतुम, क्या तुमने गुमान किया? इसको पहले तो आप अपने दिल पर लें कि अल्लाह आपको कह रहा है। अम हसिबती, क्या तूने गुमान किया, क्या तुमने ये सोचा है, तुम ये सोचते हो अंतदखुलुल जन्नता, कि तुम जन्नत में दाखिल किए जाओगे, यानी तुम सोच में पड़ गई कि मैं बस अब जन्नत में गई के गई, बस कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो पहुंच गई जन्नत में, नाम रख लिया अपना मुस्लिमा, नाम रख लिया अपना मोमिना, तब मैं जन्नत में चली जाऊंगी। वलम्मा यातिकुम मसलुल्लज़ीन खलौ मिन क़ब्लिकुम, अभी तो तुम पर वो हालात गुजरे ही नहीं जो तुमसे पहले वालों पे गुज़र चुके, अभी बिलाल की तरह तुम कोयलों पे नहीं लिटाई गई, अभी हज़रत सुमैया की तरह तुम्हारे जिस्म में तीर नहीं डाले गए, अभी खुबैब की तरह तुम्हें सूली पे नहीं चढ़ाया गया, और तुमने ये सोच लिया कि तुम जन्नत में चली जाओगी। क्या हुआ तो उनके साथ? फरमाया मस्सतहुमुल बासा वद्दर्रा वज़ुलज़िलु, उन पर सख्तियाँ गुजरीं, मुसीबतें आईं और हिला मारे गए, यानी शेक किया गया उनको, इतने कुफार ने उन पर जुल्म किए कि वो हिल गए। हत्ता के क्या हुआ? हत्ता यकूल रसूल, यहाँ तक के रसूल ने भी कहा, कौन उस दौर का रसूल, और उसके साथ वल्लज़ीन आमनू माहु, और उसके साथ वाले ईमान वालों ने क्या कहा? मता नसरुल्लाह, अल्लाह अब तू बता कब मदद आएगी। और कितनी चोटें खाएं और कितने कोयलों पे लिटाए जाएं, हमारे साथ और क्या कुछ होने वाला है। तो अल्लाह ताला ने उनको क्या जवाब दिया था, अला इन्ना नसरल्लाही करीब, जान लो कि अल्लाह की मदद बहुत करीब है, अल्लाह की मदद आने वाली है। क्या थीम है इस आयत का कि अल्लाह ताला जन्नत में भेजने से पहले बंदे को आजमाता है। आप इस आयत को अपने दिल पे लेके देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि हकीकत में जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कह देता है ना, तो ये ऐसे ही है कि जैसे आपने किसी जगह एप्लीकेशन फॉर्म दिया। इमेजिन करें ज़रा, आपको कहीं एडमिशन चाहिए, कोई जॉब चाहिए, कुछ भी दाखला लेना है, आप एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं, उसके बाद क्या होता है कोई आप में से बताएगा? कहीं आपको जॉब करनी है, आपने अपना रिज्यूमे अपनी एप्लीकेशन दी, जी आप अनिला, इंटरव्यू होता है और एंट्री टेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड होता है ना। चलिए आपने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम समझते हैं कहानी ख़त्म, कह दिया कलमा पढ़ दिया आप सीधे जन्नती। नहीं, ये सिर्फ आपने अभी एप्लीकेशन सबमिट कराई है। वो कहते हैं अच्छा देखते हैं, ठीक है रख लेते हैं, फिर वो आपको कहते हैं फलां डेट पे आइए। जिस तरह एप्लीकेशन के फौरन बाद इंटरव्यू और टेस्ट की डेट्स आती जाती हैं ना, एक जगह फिर एक जगह फिर सुपरवाइज़र के पास फला, इसी तरह याद रखिए जब बंदा अपने आप को मुसलमान कहता है तो फिर अल्लाह की तरफ से आजमाइशों के टेस्ट आते हैं, आज परेशानियाँ आती हैं, बीमारियाँ आती हैं, अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि क्या ये कैंडिडेट जो है ये डिज़र्व करता है इस जगह को, क्या ये इस रास्ते की मुशक्क़तों को बर्दाश्त कर लेगा, क्या वाकई इसके अंदर ये मौजूद है। जूँ ही हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं ना, और मैं यहाँ अपने हालात पे और आपके हालात पे कहूँ कि जब हम किताब से ताल्लुक़ जोड़ते हैं, शौरी ज़िंदगी, पहले तक हम रिवाजी मुसलमान थे, रस्मी मुसलमान थे, फैमिली के नाम से मुसलमान थे, मज़हब के खाने में हमारे पैदाइशी सर्टिफिकेट पे मुस्लिम का लफ्ज़ लिखा था, लेकिन जब ये किताब हमारी ज़िंदगी में आती है ना तो हम शौरी मुसलमान होते हैं। इसके साथ इंसान के टेस्ट होते हैं। आप कहेंगे किस किस्म का टेस्ट है, क्या नंबर सवाल आते हैं? पहला टेस्ट जो बंदे के ऊपर आता है ना, ये इंसान के अपने नफ्स का इम्तिहान होता है। इस ज़िंदगी में आते ही बंदे को अपनी ज़िंदगी को बदलना पड़ता है, पाबंदियाँ लगती हैं, कुछ काम जो कल तक नहीं करते थे अब करने पड़ेंगे, कुछ जो करते थे उनसे रुकना पड़ेगा। मसलन कोई शख्स जॉब करना चाहता है लेकिन वो सुबह 10-12 बजे तक सोने का आदी था, अब उसको 7 बजे उठना पड़ेगा। वो पहले से सेटिंग कर रहा होता है कि अब मैंने कल से काम पे जाना है, वो 1 घंटा लेट नहीं जाता कि कोई बात नहीं, नहीं 1 मिनट भी लेट नहीं जाता। ज़िंदगी में तब्दीली आती है, इंसान को कई आदत छोड़नी पड़ती हैं, तौर तरीके छोड़ने पड़ते हैं। कुछ आदात ऐसी हैं जो ईमान वालों को सूट ही नहीं करती, ये उनका स्टेटस ही नहीं कि एक मोमिन मुसलमान होके ऐसा स्टाइल गुजारे ज़िंदगी का, लिहाजा वो चेंजेस करता है। और करते करते फिर इसके बीच में एक टेस्ट जो आता है वो अन्ना की कुर्बानी देने का आता है, बंदे को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। ये टेस्टों की किस्में है। दुनिया में आप 1 महीना जॉब करते हैं आपके पास चेक आ जाता है, इस में जो टेस्ट आता है वो ये कि आपको पे साथ साथ नहीं कभी मिलती। दुनिया में तो उम्मीद लग जाती है ना कि आपकी पे शुरू हो गई, इसमें तो शुरू में जाता ही जाता है, जाता ही जाता है। याद रखिए हमारे यहाँ एक बहुत मिसकंसेप्शन है, माँ कहती है बेटा नमाज़ पढ़ लो फिर कल बहुत अच्छा पेपर होगा, नमाज़ पढ़ो देखना फिर तुम्हें कैंडी मिलेगी। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट आ गया कि जूँ ही हम नेकी करने लगते हैं ना तो देखना फिर कितनी रहमतें आएंगी, बस फिर तो तुमसे अल्लाह खुश हो जाएगा और हर वक्त तुम्हें ये देगा। बच्चों को भी ये लालच देते हैं, कभी ये ना करें। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप कुरान पढ़ने आई और अब आपकी ज़िंदगी आसानियों से भर जाए, आपके माशाल्लाह देखा अब मैं कुरान पढ़ने लग गई हूँ ना तो मेरे दूसरी तरफ नंबर अच्छे आ गए, मेरा रिश्ता आ गया, मेरा घर आ गया, अम्मी ने सेल ले दिया, कभी नहीं। अम हसिब तुमन तदखुलुल जन्ना, नहीं पहले टेस्ट आएंगे। ज़िंदगी में कई मराहल ऐसे आते हैं कि जिसमें बंदा अपने आप को साबित करता है कि मैं डिज़र्व करता हूँ, फिर अल्लाह ताला उसको अगले दर्जे में लेके जाते हैं। कहीं ईमान उसको रोकता है, कहीं कुफर उसको बुलाता है। हमारा हाल क्या होता है कि हम चूँकि टेस्ट की तैयारी के लिए तैयार नहीं होते ना, तो जूँ ही हमें इस्लाम के या किताब के रास्ते में कोई मुश्किल आती है हम छोड़ने का सोचते हैं। ये बहुत बड़ा हमारा एक मिसकॉन्सेप्शन है कि मैं छोड़ दूँगी, इस्लाम नहीं छुटता, इस्लाम छुड़ाया भी नहीं जाता। मदीना में एक शख्स था, मुसलमान हुआ, क्रिश्चियन था पहले, फिर मुसलमान हुआ। अल्लाह का हुक्म देखिए कि इधर वो मुसलमान हुआ, उसका कारोबार चला गया, अंधा हो गया, आंखें चली गईं, बेटा फौत हो गया। ये अल्लाह के नबी के पास आया, कहने लगा ये क्या बात है, जब से मुसलमान हुआ हूँ मेरे पे मुशक्कतें आई हैं, मुश्किलें आई हैं। इसका अंदर कि इस्लाम डजेंट सूट्स मी, मुझे नहीं सूट करता, मेरे से वापस ले लें। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ साथी, इस्लाम पलटाया नहीं जाता, ये वापस नहीं होता, बल्कि इस्लाम तो बंदे को इस तरह गलाता है, मेल्ट करता है, जैसे धात को पिघलाते हैं, फिर उसके अंदर से खोट निकलता है और फिर आखिर में प्योर फॉर्म में आ जाता है। इसलिए सच्चा इस्लाम आते ही इंसान को हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। हम जब ये सोचते हैं ना कि मुझे बाहर जाना है, अब वही मिसाल लाएं जो सबक के शुरू में थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, जो मिडिल में बैठा है ना उसको बाहर जाने से पहले 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा। आप सोचें ना, इधर सभा बैठी है मिडल में, ये इस रूम से निकलना चाहें कभी जरूरत नहीं करेंगी, इनको पता है मैं उठूंगी ना सारे ही हिलेंगे, इस लाइन को छोड़ूंगी, उसको छोड़ूंगी, उसको फिर कहीं निकलूंगी, उतने देर में तो आवाज़ पड़ जाएगी आप कहाँ जा रही हैं। लेकिन जो किनारों पे खड़े होते हैं ना, दरवाज़ों पे, बहानों में, ये एक्सक्यूज़ेस होते हैं, नहीं ये बहुत मुश्किल है, नहीं ये पॉसिबल नहीं, ये नहीं वो नहीं, और वो पलट जाता है। करें क्या कि पहले से तैयार रहें। आप जब साइन करें ना कुरान के लिए शऊर के साथ ज़िंदगी गुजारने का, तो साथ ही अपने जहन में तैयारी कर लें कि अल्लाह ने मुझे आसमाना है। कहते हैं कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो को जब उमैया कोयलों पे लिटाता था ना, तो ये मुस्कुराते थे, हंसते थे, कहते थे कि तुम लोग एक घड़ा ख़रीदते हो मिट्टी का, पानी का वाला, तो तुम ठोक के देखते हो कि कहीं इसमें छेद तो नहीं, तो क्या मेरा रब मुझे ठोक बजा के नहीं देखेगा कि ये बोझ उठाएगा नहीं। इसलिए कि आप देखिए कि जिन्होंने इस्लाम के लिए काम करना होता है ना, अल्लाह ताला उसको खूब ठोक बजाता है। शुरू में ज़रूर मुश्किलें आती हैं, हमारे कल के सबक में भी ये मैसेज था 17वें पारे में, कि इब्तदाई दौर में ज़रूर मुश्किलात आती हैं। क्यों आती हैं? ताकि वो लोग फाउंडेशन बन जाए। आप बिल्डिंग बनाते हैं ना, सबसे मुश्किल चीज़ फाउंडेशन है, कूटते हैं। आप कभी देखें बड़े बड़े बिल्डोज़र्स उसको कूटते हैं कि स्ट्रॉन्ग हो जाए, कहीं कोई होल ना रहे। जब भी आप कोई काम नया करेंगे ना किसी सोसाइटी में, शुरू वाले लोग बहुत कीमती होते हैं, क्योंकि वो बुनियाद होते हैं। आप अपनी फैमिली की पहली लड़की हो सकती हैं जो कुरान की तरफ आई, आप पे मुश्किलात आएंगे, आप पहली खातून हो सकती हैं, आप इस सोसाइटी का या आप इस शहर में पहला बैच है ना हमारे साथ, इंतहाई मुश्किल होगी, जगह भी तंग होगी, मुश्किलात भी आएंगी, लेकिन आप समझें कि अल्लाह आपको तैयार करे, आपने बुनियादों में जाना है। आपके ऊपर इंशाल्लाह फिर इतनी स्टोरीज़ के महल तैयार होने हैं जिसको आज आप समझ नहीं सकते। वो शेर भी है ना कि वो यहीं से पलट जाए जिसे जहाँ हो प्यारी, हाँ, जिसको अपनी जान प्यारी है वो जाए। अल्लाह ताला कहते हैं मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं, यहीं से पलट जाए जिसको जान हो प्यारी। अल्लाह का रास्ता ये शुरू की मुश्किलों का है, लेकिन याद रखे जब अल्लाह की तरफ से मदद आती है, अला इन्ना नसरुल्लाही करीब, अल्लाह ताला इतनी फिर खैर देता है। आपको आज पता ही नहीं अल्लाह ने कल आपको इस कुरान से जुड़ने के बदले में क्या देना है। यकीन करें, कोई सीना खोल के देखे और आपको कोई बताए कि कितना सुकून, कितना इत्मीनान, कितना अचीवमेंट का एहसास आपको होने वाला है। आपको अपनी ज़िंदगी सिर्फ एक वजह से प्यारी हो जाएगी कि अल्लाह मुझे ज़िंदगी दे क्योंकि मैंने तेरी किताब की खिदमत करनी है। अल्लाह मेरी जग वजह से कहीं अंधेरों में रोशनी करवा दे, मेरी वजह से कुछ जहन्नुम से बच जाए। शादियाँ भी आपकी होंगी, बीच में मंगनियाँ भी होंगी, खाएंगे, बच्चे भी होंगे, आप सब चीज़ें इंजॉय करेंगे, लेकिन आपका मेन गोल ज़िंदगी का क्या रहेगा कि अल्लाह मैंने आपके लिए कुछ करना है। और ये अल्लाह के वादे हैं, जो शुरू की मुश्किलात सह लेता है उसके बाद फिर उसके ऊपर खैर आती है। मोमिन कभी फ़रार का रास्ता नहीं ढूंढता, हाय अब टेस्ट देना पड़ेगा, मैं नहीं करती कोर्स, अच्छा असाइनमेंट्स भी है, मैं नहीं करती, अच्छा टेस्ट भी वर्कबुक में तर्जमा भी लिखना पड़ेगा, चलो फिर मैं ये कोर्स छोड़ देती हूँ। कहाँ जाओगे? कोई नहीं भागने देगा, वल्लाहु मुहीतुम, खैर के ले आएगा क़यामत के दिन, मौत की सूरत में फरिश्तों को भेजेगा कि ये बंदा सारी ज़िंदगी मेरे से भागता भागता था, जाओ लेके तो आओ। आप देखिए कि छोटे बच्चों के टेस्ट होते हैं ना, तो माएँ उनको खेल खेल में सिखाती हैं, बच्चे कहती हैं माएँ ये डोनट है, नहीं नहीं ये सर्कल है, इसी से सर्कल सिखा दिया, ये ट्रायंगल कुकी है, हाँ हाँ इसे ट्रायंगल सीखा, खेल खेल में माँ सिखाती है ना। इसी तरह याद रखें कि अगर हम इस दुनिया की चीज़ों में रहते हुए अपनी जन्नत की तैयारियां कर लें, और बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको अल्लाह ताला अपनी तरफ बुलाने के लिए बहाने कर दे देता है, मौके देता है। आप में से सबसे ज़्यादा वो खुशकिस्मत है जो सबसे छोटी उम्र के इस वक्त, यकीन करें। अब बड़ी उम्र वालों के लिए कोई इसमें कोई डिस्करेजमेंट नहीं है, लेकिन जो जल्दी आ गए उसने अपना नामे माल गंदा नहीं किया। वो अभी नया नया ही है, और नई चीज़ नहीं होती है, पुरानी हो के साफ़ करें, धोएं, ब्लीच डालें, वो निखार नहीं आता। गो के तौबा का पानी इतना प्यारा है कि वो वाकई आप सबको पिछले 20-25 साल के गुनाहों से भी पाक कर देगा, लेकिन शर्त यह है कि आप जमे रहें। अगर हकीकत में हम इस पे जमे रहेंगे तो अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। इसीलिए अब अल्लाह ताला सहाबाए कराम की उन आदात का तذکرہ फरमाते हैं, और जो मुश्किलात आती हैं आप देख लीजिए, बीमारियाँ, तकलीफ़ें हैं, डिज़ास्टर्स हैं, कहीं कोई मुश्किल आए फ़ौरन समझे एक और टेस्ट आ गया, लोग डॉक्टर ने एक और टेस्ट लिख के दे दिया कि चेक करना है तुम्हें कैंसर तो नहीं। अल्लाह गुनाहों के कैंसर से बचाने के लिए मुश्किलों के टेस्ट लाता है ताकि हम अपने आप को प्योरीफाई कर सकें। हिलना नहीं, कहें अल्लाह को, अल्लाह हम नहीं हिलेंगे, हम नहीं पीछे हटेंगे। सहाबे कराम इस किस्म के लोग थे कि अल्लाह के नबी के पास आके अपनी पुश्त उठाते थे। आपको पता है कि एक सहाबी थे, इस्लाम कबूल करने के बाद बैठे हुए थे, तो हज़रत उमर ने उनसे कहा, आपने उनका नाम लेके कहा कि साथी इस्लाम से पहले कि अपनी कहानी सुनाओ। तो आपको पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी कमीज़ उतारी और अपनी बैग दिखाई तो उनकी स्किन के ऊपर इतने घड़े पड़े हुए थे, जिसको आप कह सकते हैं कि गहराई, जैसे अब कोई भी इमेजिन करें गोश्त अंदर से नुझ जाए। तो वो फिर उन्होंने बताया कि ये देखो कि मेरी स्किन के ऊपर मेरी हिस्ट्री लिखी हुई है, कि इस्लाम लाने की कीमत में मुझे मेरा मालिक तपते हुए कोयलों पे लिटाता था, और वो कोयले मेरी जिल्द के अंदर जाके सुराख कर देते थे, बच्चे मेरे ज़ख्मों से खेलते थे। मता नसरुल्ला, हमने तो कुछ सहा ही नहीं। मैं कहती हूँ हम तो इतने कंफर्ट में बैठ के इस्लाम ले और दे रहे हैं, फिर भी रोएं, फिर भी ना करें, फिर भी हमारा दिल ना लगे, तो कितनी बदबख्ती की बात है। अला इन्ना नसरुल्लाह करीब। हज़रत बिलाल ने कभी सोचा था कि मक्का से जाके मदीना में ये हालात आएंगे? यकीन करें अल्लाह बड़ी कुशादगियाँ देगा। मैं सुबह ये आयतों की तैयारी कर रही थी तो मैं अल्लाह से दुआ कर रही थी, और मुझे तो अल्लाह से बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं जो शायद आपको भी नहीं। अभी मेरा तो ईमान है इस पर कि आज अगर आप तंग बैठते हैं, आपको गर्मी है, सर्दी है, कुछ है, एक वक्त आएगा आप देखिए, अगर हम हक के साथ जमे रहे, आपके पास इतनी बेहतरीन जगह होंगी यहाँ सीखने सिखाने की, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। कभी सोचा था सहाबे कराम ने कि हम मदीना के इतने बेताज बादशाह बन जाएंगे? शर्त क्या है कि बंदा इस टेस्ट को पूरा करे। और आखिरी आयत सबक की कि जिसमें सहाबे कराम के खड़े होने की दलील थी, और वो क्या कि पैसा पास आता था तो ये नहीं कहते थे कौन सा बैंक अच्छा है, उसमें अकाउंट खोल दें, कहाँ लगा दें, बल्कि अल्लाह के नबी के पास आके पूछा करते थे, यसलू नकमाजा युनफिकून, लोग आपसे पूछते हैं हम क्या खर्च करें। पहली बात तो इस सवाल से देखिए कि ये सवाल पूछने वाले सहाबाए कराम थे, तो माल था तो तभी पूछते थे ना। क्या पता चला कि माल होना कोई बेदीनी नहीं है, कोई शर्मिंदगी की ज़रूरत नहीं है अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है। दौलत होना, ईमान की दौलत और दुनिया की ये दौलत, कि ये दोनों एक दूसरे के अपोज़िट चीज़ें नहीं है। मनी हो सकती है, लेकिन करना क्या है ना, दौलत अपने असल से अच्छी है ना बुरी है, असल यह कि आप उसका इस्तेमाल क्या करते हैं। सहाबा कराम अपने माल को ला ला के अल्लाह के नबी के सामने रखते थे, अल्लाह के नबी बताएं इसको कहाँ खर्च करें, क्या करें। का कुल मा अनफक्त मिन खैरिन, कह दीजिए जो कुछ भी तुम खर्च करो अपने वालदैन पर करो। फलिल वालिदैन वल अक्रबीन वल यतामा वल मसाकीन वबनिस सबील, तो जो खर्च करो अपने वालदैन पर, रिश्तेदारों पर, यतीमों और मिसकीनों और मुसाफिरों पर खर्च करो। और याद रखो, वमा तफ़लू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, जो भी काम तुम नेकी का करोगे अल्लाह ताला इसको खूब अच्छी तरह जान रहा है। इस आयत के अंदर जो थीम है सहाबे कराम की मोहब्बत, के माल को जमा कर कर के नहीं रखते थे, उनका माल अपने लिए भी होता था, अपनी ज़रूरियात के साथ साथ वो दीन की ज़रूरियात को सामने रखते थे। अल्लाह ताला ने उनके इस सवाल को यहाँ पेश करके हम सबको दावत दी कि अगर हमारे पास माल है किसी भी सूरत में, देखिए माल सिर्फ रुपीस में नहीं होता, डॉलर्स में नहीं होता, ये स्किल्स की सूरत में भी होता है। कोई खूबी है हमारे पास, वक्त है हमारे पास, सोना है, कोई ज़मीन का टुकड़ा है, कोई हमारे घर का कोई कमरा खाली है, हम किस तरह अपने माल को अल्लाह के रास्ते में पेश करें। यहाँ पूछा कहता क्या खर्च करें, यहाँ वो नहीं बताया क्या खर्च करें, ये बता दिया कि कहाँ खर्च करो। लेकिन बिल्कुल आगे आप सूरह बकरा में एक और आयत पढ़ेंगे, यस सलूना कमाज़ा युनफ़िकून से, तो वहाँ बताया गया कि तुम वो खर्च करो जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़ायद है। खुलिल अफ़, ज़्यादा ज़रूरत खर्च करो। तो बहरहाल इस आयत की बुनियाद पे हम जो बात कर सकते हैं वो क्या है कि इस्लाम में माल कमाना कोई बुरी बात नहीं। अलकासिबु हबीबुल्ला, फरमाया मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। आपने फरमाया कि मोमिन जो माल कमाता है उसके अंदर से अल्लाह का हक भी देता है, ज़कात की सूरत में बंदों का हक भी देता है, अपनी ज़रूरियात को पूरा करता है, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें जो है वो अल्लाह के दीन और अल्लाह के बंदों में लगा देता है। माल फितना कब बनता है? जब सिर्फ हमारी ख्वाहिशात पे लगे। माल फितना कब बनता है? जब ज़रूरियात भी माल के साथ बढ़ती जाएँ, ख्वाहिशात जो हैं वो ज़रूरत बन जाएँ। देखिए, जब बंदे की वॉन्ट्स उसकी नीड्स का दर्जा इख्तियार कर लेती है ना, तो फिर वही बात है कि इसका तो अपना ही पेट नहीं भरना, ये दूसरे को क्या देगा। आप आजमा के देखें कि जब लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं ना, तो उनके पास काफ़ी सेविंग्स होती हैं, वो अपनी ज़रूरत से बाद बाकी एक्स्ट्रा अल्लाह के रास्ते में लगाते रहते हैं, रिश्तेदारों को भी देते हैं। लेकिन जूँ ही बंदा अपनी गर्दन पर ज़्यादा बोझ डाल लेता है ना, तो वो बाज़ दफ़ा ज़कात से भी पीछे हो जाता है। इस्लाम चाहता है कि आप खूब हलाल तरीके से अपनी नमाज़ों को साथ लेते हुए पैसा कमाएं। मर्दों के ऊपर ये ज़िम्मेदारी रखी है, खूब कमाएं, लेकिन उसके अंदर से अपनी ज़रूरत का लेके अल्लाह ताला से कहें ये बाकी आपका है। मसलन आप देखिए कि कभी आपने देखा है कोई बिज़नेस टूर पे या कोई किसी कंपनी की तरफ से किसी बिज़नेस टूर पे जाता है, तो आप कहते हैं कि वो कंपनी उसके खाने का भी भेज पे करती है, उसका टिकट भी करती है, उसका होटल भी करती है। उस मिसाल को आप दुनिया में ले आए, हम सब अल्लाह ताला की कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, इस दुनिया में आए। अल्लाह ने हम सबको क्या कहा? आप सब बोलेंगे तो मुझे खुशी होगी, क्या काम दे के भेजा हमें? इस्लाम फैलाओ। कुन तुम खैर उम्मत अखरिजत लिन्नास वजअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदा अलन्नास। हम सब दुनिया में इसलिए भेजे गए कि अल्लाह ताला के इस दीन के नुमाइंदे बन के दुनिया में जिए, लेकिन हमें खाना तो है, रहना भी है। अल्लाह कहता है डोंट वरी, आई विल पे फॉर देट। तुम्हारे घरों के खर्चे मैं दूंगा, तुम्हारी ट्रैवलिंग मैं दूंगा, तुम्हारा खाना पीना मैं दूंगा। बस आप अल्लाह के कामों में लगे रहेंगे, अल्लाह आपके कामों में लगा रहेगा। हम जब वो काम छोड़ के, आप कोई गया हो किसी कंपनी की तरफ से, सोचिए ज़रा, इमेजिन करें, यहाँ से किसी को दुबई भेज दिया कंपनी वालों ने, वो टिकट दे के, होटल चोटल दे के, कि जाओ भाई वहाँ से तुम कुछ सैंपल्स लेके आओ, कुछ बिजनेस डील करो। आप वहाँ आप जाएं, आप बाज़ारों में घुसे रहें, शॉपिंग करते रहें, आप वहाँ फनप्लेक्स में घूमते रहें, आप वहाँ जाके कोई अंदर खाते अपना ही फ़ायदा करते रहें, क्या वो कंपनी आपको दोबारा भेजेगी? चीटर हुए ना आप। ये है आज के मुसलमानों की कहानी। अल्लाह से ये सब कुछ लेके इस सोच के साथ आए थे कि अल्लाह हम तेरे काम करेंगे, तू हमारे करना। जैसे आपके एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो आपकी अम्मी आपको क्या कहती हैं? अगर आप कुछ काम उनके साथ आम दिनों में करती भी थी ना, तो वो कहती, नहीं बेटा कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी, तुम पढ़ो, ऐसी कहती है ना। चले सुबह मैं तुम्हारा नाश्ता भी बना दूँगी, क्योंकि तुम एग्ज़ाम दे रही हो, तुम्हारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जल्दी सो जाओ, जाओ शाबाश, जल्दी सो जाओ, सुबह मैं उठा दूँगी। बिल्कुल इसी तरह हम इस दुनिया में आए इम्तिहान के लिए। अम हसिब तुम अन तदखुलुल जन्ना को सोच लें, अल्लाह कहते हैं तुम इम्तिहान दे रहे हो, तुम्हारा सारा रिस्क मेरे ज़िम्मे है, तो जो तुम्हें मिलता है उसको शेयर करो। जी लिस्ट अल्लाह ने यहाँ दे दी, और याद रखो वमा तफलु मिन खैरिन, जो खैर करोगे। यहाँ अगर आप अरबिक लफ्ज़ों पे देखें ना, तो खैर का लफ्ज़ दो दफ़ा आया है। पहले खैर का मानी आपको बताया माल, मनी मैटर्स, और अब खैर का मतलब गुड डीड्स। तो माल को भी खैर कहते हैं अगर वो खैर के कामों में लग जाए। तो फरमाए फ़ाइनल्लाह बिही अलीम, अल्लाह उसको खूब जानता है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें इस्लाम का सही रुख समझने की तौफीक दे, हम सही मानों में दीन और दुनिया को साथ लेकर चलें, और ऐसा ना हो कि हम एक छोटा सा टुकड़ा दीन का लेके एक पज़ल में से निकले हुए टुकड़े की तरह उसी को पूरा दीन समझने लगें। सुभान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।